जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। हरे कृष्णा। 31 सभी हरि भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास के दशम दिन की कथा में आज भगवान के महान भक्त माधवदास जी महाराज की लीला कथा हम सुनेंगे। माधवदास जी महाराज वेद व्यास जी के अवतार थे भक्तमाल के अनुसार। माधवदास जी महाराज जी का जन्म हरियाणा के गोली गांव में हुआ था और कन्य कुब्ज ब्राह्मण थे वो। वेद व्यास जी के अवतार होने के नाते भक्ति तो बचपन से ही थी उनमें। समय रहते उनका विवाह हो गया और पुत्र की प्राप्ति भी हुई। धर्मपत्नी भी बड़ी आज्ञाकारिणी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। समय परिस्थिति में धर्मपत्नी का देहांत हो गया और धर्मपत्नी के देहांत के बाद माधवदास जी के मन में बड़ा वैराग्य जागृत हो गया कि संसार में कुछ नहीं रखा, ये संबंध सब क्षण भंगुर है। ऐसा उनके मन में वैराग्य जागृत हो गया। लेकिन एक पुत्र था तो अभी चिंता किए कि पुत्र जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक तो रुकना पड़ेगा, तब तक तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, भगवान की ऐसी प्रेरणा हो गई कि उनमें उनके मन में दृढ़ भाव जागृत हो गया कि सबका पालन तो प्रभु कर ही लेते हैं, हम तो व्यर्थ में अपने आप को पालनहार बताते हैं। ऐसा मानते हुए अपनी वृद्ध माता और पुत्र को छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए जगन्नाथपुरी की तरफ निकल गए। संसार की दृष्टि से ये कार्य उचित नहीं लगता, लेकिन नित्य संबंध भगवान का आत्मा के साथ है, उस दृष्टि से ये योग्य है। शारीरिक जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हुई इसलिए संसार इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन आत्मा की मूलभूत जिम्मेदारी पूरी हो रही है इसलिए शास्त्र इसका विरोध नहीं करता, साधु जन भी इसको मानते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद सोचा अभी यहीं प्रभु के धाम में रह के भजन करेंगे, यहीं जीवन व्यतीत करेंगे। 3 दिन हो गए ऐसे निर्जन स्थान में बैठे हुए, 3 दिन तक भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं हुई। जगन्नाथ भगवान को बड़ी चिंता हो गई कि मेरे धाम में, भगवान का धाम भगवान का अपना घर ही होता है, मेरे घर पे कोई 3 दिन से आया हुआ है और भूखा है, उसने कुछ खाया नहीं, ये तो ठीक बात नहीं, मुझे तो उसकी चिंता करनी चाहिए। तो जगन्नाथ भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। जगन्नाथ भगवान की सोने के ताले में लक्ष्मी जी ने अनेक प्रकार के भगवान के प्रसाद रखे उसमें, और माधवदास जी को देने के लिए गए। लक्ष्मी जी का रूप इतना तीव्र था कि माधवदास जी के पास में जब लक्ष्मी जी पहुंची तो उनको लगा कि एकदम से प्रकाश कहाँ आ गया, रात्रि के समय में दिन जैसा उजाला कैसे हो गया। वो ठीक से देख नहीं पाए, लक्ष्मी जी वहीं पर ही प्रसाद रखी और वहाँ से लक्ष्मी जी चली गई। उन्होंने देखा तो सुंदर सा भोजन का थाल वहाँ पर रखा हुआ है। माधवदास जी ने इसको भगवत कृपा समझते हुए इसको ग्रहण कर लिया। दूसरे दिन सवेरे जब पुजारी लोगों ने देखा कि भगवान की जो सोने की थाली है वो गायब हो चुकी है, इधर उधर सब ढूंढ रहे परेशान होकर कि भगवान के मंदिर में चोरी किसने की, इधर उधर भ्रमण करते हुए थाली मिली इनके माधवदास जी के पास में। माधवदास जी कुछ बोलते उतने में तो उन लोगों ने माधवदास जी को कोड़ों से मारना शुरू कर दिया, तुमने चोरी की है वगैरह वगैरह। कहते जिन भगवान को भक्त लोग इतना पूजते हैं, भगवान क्या उनको ऐसे मार भी खिलाते हैं, भोजन भी खिलाते हैं रात्रि को और सवेरे मार भी खिलाते हैं। अगर भगवान को भक्त इतने प्रिय है तो भगवान क्यों मार खिलाते फिर? तो इसका संशय का समाधान ये है, माधवदास जी नए नए आए थे जगन्नाथपुरी में, भगवान ने एक दिन उनको भोजन की थाली पहुंचाई। माधवदास जी इसी प्रकार अगर अयाचक वृत्ति में रहते रहेंगे जगन्नाथपुरी में तो जीवन निर्वाह रोज रोज करना तो कठिन है, भगवान तो करते रहेंगे रोज, लेकिन उनका एक महान भक्त जगन्नाथपुरी में इस प्रकार छुप कर रहेगा कि कौन किसको समझ में आएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, दूसरे दिन माधवदास जी को पूरी जगन्नाथपुरी में शीघ्र प्रकट करने के लिए चोरी का इल्जाम लगा के खूब मार पड़वाई। तो क्या भक्त को उसका कष्ट हुआ, भक्त को मार लगी? भगवान ने ये देखने के लीला करवाई, लेकिन मार भक्त को नहीं लगी, मार तो सारी जगन्नाथ जी ले गए अपने ऊपर, सिर्फ कहने के लिए ये घटना हुई। तो कहते मार जगन्नाथ जी अपने ऊपर ले गए तो चोरी का इल्जाम तो रहा कि भाई माधवदास जी ने चोरी की। कहते जब प्रभु अपने ऊपर मार ले गए और वो चमत्कार जब मंदिर में जाके पुजारियों ने देखा ना कि भगवान का शरीर तो पूरा सूजा हुआ है, तो पुजारी भगवान से पूछते जय जय प्रभु ये क्या हो गया? कहते तूने तू आप सभी लोगों ने मिलके बिना सोचे समझे मेरे भक्त को इतना मारा, तो मेरे भक्त से प्रेम करने के कारण उसको तो मैं मार खाने नहीं दे सकता था, इसलिए सब कुछ मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो पुजारी कहे प्रभु उसने तो चोरी की थी इसलिए हमने मारा। भगवान कहते कौन कहता है उसने चोरी की, मैं खुद ही जाके देख के आया था। अच्छा प्रभु आप खुद देकर आए थे, इसका मतलब इतना बड़ा महान भक्त है? भगवान कहते हाँ। अब भगवान ने उनको चोर इसलिए बनाया ताकि शीघ्र ख्याति फैल जाए। भगवान के काम करने के जो ढंग होते हैं ना बड़े निराले होते हैं, इसलिए भक्त लोग भगवान के लीलाओं में भगवान जो व्यवस्था करते हैं ना उसमें संशय नहीं करते, स्वीकार कर लेते हैं। यही भगवान की महानता होती है। रामदास बोडाना को भी मार लगी थी, तीर मारा हुआ था, डाकोर में रणछोड़ राय जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया लेकिन उनको मार नहीं खाने दी। हरिदास जी को 22 बाजार में मारा तो चैतन्य महाप्रभु ने मार अपने ऊपर ले ली, हरिदास जी के ऊपर नहीं आने दिए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उसकी पीड़ा राम जी ने अपने ऊपर ले ली। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं और भक्त वात्सल्य गुण भगवान का इतना बड़ा है जिसको दिखाने के लिए भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं वो तो जब विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो और ऐसे विषम परिस्थिति में भी भगवान उनके पक्ष में खड़े रहे और भगवान खुद सहन करे तब समझ में आएगा ना भगवान कितने भक्त वत्सल है। इसलिए भगवान अपने भक्तों की महत्वता प्रकट करने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो पुजारी लोगों ने कहा, प्रभु फिर तो ये इतना बड़ा महान भक्त है तो हमसे तो अपराध हो गया, हमको माफ कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, अपराध आप सब लोगों ने माधवदास जी का किया है, मेरा नहीं। सब लोग जाके उससे माफी मांगिए, क्योंकि जिन भक्त के चरणों में अपराध किया है माफी भी उन्हीं से ही मांगनी पड़ेगी। सब आए और माधवदास जी के चरणों में माफी मांगी उन लोगों ने। माधवदास जी तो संकोच में भर गए, अरे मैं कोई ऐसा महान नहीं हूं कि ये सब लोग मेरे पास आके माफी मांग रहे हैं। वो तो और ज्यादा संकोच में चले गए, कहते भाई 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 ऐसा मत करो। संत हृदय था तो तुरंत उस बात को भूल गए, उन्होंने माफ भी कर दिया। तो इस प्रकार जो माधवदास जी है उनको बड़ा संकोच हुआ ये जानकर कि जगन्नाथ भगवान को मेरे कारण मार पड़ी, चोट उनके ऊपर गई। तो इतना बड़ा संकोच उनके हृदय में हुआ कि हमारे यहां जगन्नाथपुरी आना क्या लाभदायी हुआ, हमारे जगन्नाथपुरी आने से तो स्वयं भगवान को चोट लगी, भगवान के ऊपर मार गई, ये तो ठीक नहीं हुआ। वो अपने अपने को धिक्कारने लगे कि मेरा कैसा जीवन, वो खुद ही अपने आप को धिक्कार रहे हैं और सोचे कि समुद्र किनारे रहेंगे निर्जन स्थान में और वहीं भजन किया करेंगे। तो माधवदास जी वहां से समुद्र किनारे की तरफ चले गए और दिन में एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आ जाते हैं। अभी माधवदास जी जब भी मंदिर में आते ना सब लोग माधवदास जी का बड़ा सम्मान करते हैं, जिनके लिए भगवान ने स्वयं मार सहन की हो, कोई उनको रोक टोक नहीं, कोई उनको नहीं कुछ नहीं कहता। कभी कभी भगवान के दर्शन करने मंदिर में आते और भगवान के मंदिर में दर्शन करते हुए भगवान के घंटों बैठे रहते। जब मंदिर बंद करने का समय हो जाता तो पुजारी पहरेदार उनको ये नहीं कहते चलिए अभी मंदिर बंद हो रहा है, उनको वहीं बैठे रहने देते, उनको कोई कुछ नहीं कहता, भगवान के इतने प्रिय है बैठे तो बैठे रहने दो। बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाते सब, बैठे रहने दो उनका मन करता है तो। ऐसा लगाव हो गया था माधवदास जी का भगवान के साथ और सभी लोग उसको मान भी देते थे। सर्दियों के दिन में माधवदास जी एक दिन संध्या को दर्शन करने आए और दर्शन करते करते इतने भावुक हो गए। अब मंदिर बंद करने का समय हुआ तो पुजारी ने उनको परेशान नहीं किया, उनको वहीं बैठे रहने दिया और मंदिर बंद करके चल पड़े। अब रात्रि अधिक हो गई, अब माधवदास जी को ठंड लगने लगी, अब सिकुड़ के वहीं कोने में सो गए लेकिन ठंड लग रही है। तो पुजारी ने भगवान को बड़ी सुंदर सी रजाई उड़ाई हुई थी, भगवान ने रात्रि को रजाई निकाल के माधवदास जी को उड़ा दी, वहीं भगवान के सामने सोए हुए माधवदास जी को उड़ा दी। सवेरे जब पुजारी आए तो क्या देखते हैं, जगन्नाथ जी की रजाई माधवदास जी ओढ़ के सो रहे और खराटे भी ले रहे। पुजारी कहते ये क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी की रजाई इन्होंने ओढ़ी और आराम से मंदिर में एकदम लंबे पाँव करके सो रहे। पट खुल गए, भगवान की नित्य क्रिया शुरू हो गई, लेकिन माधव दास जी को किसी ने जगाया नहीं। इनका और भगवान का अपना अपना मूड है, भगवान इनको रजाई उड़ा देते हैं तो फिर हम क्या उसमें कुछ कहे। भगवान की संपत्ति, भगवान को जो करना है करे। माधव दास जी उठे तो सोचे रजाई कहां से आई। उनको समझ में आया कि जगन्नाथ जी ने उड़ा दी रात को मुझे। ऐसा माधव दास जी और जगन्नाथ जी के बीच में प्रेम था। समुद्र किनारे पर रहते थे। एक दिन के प्रसंग में क्या हुआ, भगवान की कृपा से ही समझ लीजिए माधव दास जी को जीर्ण रोग हो गया, शरीर में पानी भी ना रहे। अभी बार बार उनको शंका निवारण करने जाना पड़े, शरीर बड़ा कमजोर हो गया, अब उठ भी नहीं पा रहे, स्नान भी नहीं कर पा रहे जाके, और निर्जन स्थान में समुद्र के किनारे है, कौन वहां जाता और कौन वहां देखता उनको। तो माधव दास जी का मलमूत्र हो चुका है, लेकिन उनके शरीर में हिम्मत नहीं है। एक छोटा सा बालक आया, कहते बाबा बड़े दिनों से यहां पर पड़े हो, क्या बात है। कहते बेटा बीमार हो गए, मैं कुछ मदद करूं। नहीं, कहते तू क्यों मदद करेगा। अभी मलमूत्र हो गया तो बदबू आ रही है, कोई पास में भी नहीं जा रहा था, लेकिन यह बालक आ गया। और बालक ने बिना किसी संकोच के, घृणा के, माधव दास जी को नहलाया धुलाया, उनको स्वस्थ किया। दूसरे दिन फिर बालक आ गया। माधव दास जी सोचने लगे कि कोई मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है, ये बालक आता है बिना किसी संकोच के आके ऐसी सेवा करके चला जाता है। माधव दास जी ने उसका हाथ पकड़ा, भाई तू कौन है, तेरा नाम तो बता, तू यहां आता है। कहते मैं बस यहीं पास में रहता हूं, मैंने आपको देखा इसलिए आ जाता हूं। कहते लेकिन ऐसी निस्वार्थ सेवा तू करने आता है भाई। भगवान जब तीसरे दिन आया तो माधव दास जी को शंका हो गई, उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया। कहते तू सच में बता भाई तू कौन है। कहते बाबा छोड़ो, कल से नहीं आऊंगा लगे तो। कहते नहीं नहीं नहीं, लेकिन तू बता दो सही तू कौन है। अब छोड़े ही नहीं। माधव दास जी बार बार पूछे, प्रभु बार बार मना करे, उसी के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, माधव दास जी को थोड़ी भनक लग गई कि हो ना हो ये जगन्नाथ जी ही लगते हैं। जब माधव दास जी ने हाथ नहीं छोड़ा और जिद की, तब जगन्नाथ जी खुद प्रकट हो गए उनके सामने। अब माधव दास जी बड़े दुखी है, ओहो प्रभु आप यहां मेरी सेवा करने आए, आपको आने की क्या आवश्यकता थी। अरे आप तो इच्छा करते तो भी मेरा रोग दूर हो जाता, तो आप यहां क्यों आए और आपने ऐसा घृणित कार्य किया। माधव दास जी को बड़ा दुख लग रहा है। तो जगन्नाथ भगवान कहते हैं, मैं इच्छा करता तेरे कष्ट निकल तो जाते, लेकिन अगर मान लो कर्म का कुछ भाग रह जाता तो फिर नए भुगतना पड़ता, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे भक्त के जीवन में कर्म का भाग कोई रह जाए, इसलिए मैं यहां पर आया था। दूसरा भगवान कहते हैं, मैं ये भी दिखाना चाहता हूं संसार में लोगों को कि मेरे प्रति अनन्य शरणागति रख के भजन करने वाले लोगों का जीवन में क्या होगा, ऐसा कभी लोग संशय करते हैं। तो उनको ये दिखाना भी चाहता था मैं कि मेरे शरण में आए हुए जो भक्त होते हैं उनकी वृद्ध अवस्था में या बीमारी की अवस्था में उनके साथ क्या होता है। ये भगवान कहते हैं, ये मैंने सेवा करके साबित किया कि उनका तो स्वयं पालन मैं करूँगा, इसलिए मेरे चरणों में आते समय कोई संकोच ना करे, भय ना करे कि हम प्रभु भजन के लिए जा तो रहे लेकिन वृद्ध अवस्था आएगी जब कमजोर हो जाएंगे या निर्धन हो जाएंगे असहाय अवस्था में हमारा कौन मदद करेगा। तो भगवान कहते हैं इस संसार के लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने लीला की थी और मुझे अपने भक्तों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तो माँ भगवान की दया से माधवदास जी स्वस्थ भी हो गए और संसार को भगवान ने एक नई प्रेरणा भी दे दी। अब पूरे जगन्नाथपुरी में जगह जगह माधवदास जी की ख्याति फैल गई। जब स्वयं जगन्नाथ जी उनके लिए इतना करते हो तो ख्याति फैलने में समय नहीं लगेगा। अब बार बार लोग मिलने आए तो माधवदास जी सोच में पड़ गए, बार बार लोग इसी प्रकार से मिलने आएंगे, बड़ाई करेंगे, हमारा तो भजन नष्ट हो जाएगा। कीर्ति दो प्रकार की होती है, जड़ कीर्ति होती है और आध्यात्मिक कीर्ति होती है। जड़ कीर्ति में क्या होता है, व्यक्ति जब अपने जीवन में पुरुषार्थ करता है लेकिन उसके पुण्य या तो पुरुषार्थ जब पूर्ण हो जाए या बंद हो जाए ना, जब खत्म हो जाए, तब उसकी कीर्ति भी धीरे धीरे करके नाश हो जाती है। जगत में ऐसे कई लोग हैं जो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से मान लीजिए किसी राज्य का निर्माण किया हो या किसी बड़े बिजनेस का निर्माण किया हो, लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय में वो उन्हीं के ही घर में से या उन्हीं के ही बिजनेस में से उपेक्षित किए जाते हैं। ये जड़ कीर्ति ऐसी होती है कि आपकी मेहनत चलती रहेगी, आपका पुण्य चलता रहेगा, तब तक मान रहेगा, फिर आपके जीते जीते भी मान निकल जाएगा। और आध्यात्मिक कीर्ति, दिव्य कीर्ति ऐसी होती है जिसका सीधा संबंध भगवान से होता है और भगवान नित्य होते हैं, इसलिए भगवान से संबंधित वो कीर्ति भी नित्य होती है। इसलिए संत महात्माओं के चरित्र में जो भी कीर्ति फैलती है ना, वो नित्य रहती है। संतों के चले जाने के अनेक अनेक वर्षों बाद, सदियों बाद भी उनकी कीर्ति नहीं मरती, वो जीवित रहती है। इसलिए यहां माधवदास जी को कीर्ति है ना, वो दिव्य कीर्ति है, सामान्य नहीं है। लेकिन भक्त फिर भी ऐसी कीर्ति से घबराते हैं कि कहीं भजन का नाश ना हो जाए, उसी कीर्ति में मेरा मन अगर भटक गया तो भजन का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अपने अहंकार को तोड़ने के लिए अभी भिक्षा मांगते हैं। अभी क्या किया उन्होंने, भिक्षा मांगने की शुरुआत की तो जहां पर रहते थे वहीं पास में ही एक मकान था, उसमें एक माता रहती थी। सोचा इसी के घर से शुरुआत करते, वो थोड़ी कर्कशा स्वभाव की थी। और भिक्षा मांगने जब निकले तो जगन्नाथपुरी में लोग भी कहने लगे कि इसका तो भजन खत्म हो गया लगता है, अभी अपना पेट भरने के लिए घर घर घूमता है ये, इसका भजन तो पूरा ही समझो अभी। माधवदास जी को सुन के अच्छा लगता था कि चलो लोग मुझे ऐसा समझ रहे कि अभी मेरा पतन हो ही गया है, तो ये भी कहते अच्छी बात है। अब पहले ही वो घर पड़ता था, पहले ही वहां गए और जाके कहा जय जगदीश भवती भिक्षाम देही। अभी वो जो माई थी ना, भगवान की क्या लीला रही होगी, वो बड़ी कर्कशा स्वभाव की थी, बड़ी झुंझला कर बोली, निकल पड़े झोली लेकर, हम क्या तेरे वहां से कोई मेहनतानी कोई कमाई करके लाए जो तुम्हारे यहां पर वसूली करने आया है, लेने आया हमारे घर पे, हम तेरे घर पे क्या कुछ रखे गए थे जो वसूली कर रहा है तू। अब डांटने लगे, कमाते जमाते हो नहीं, दिन भर पड़े रहते हो आलसी की तरह, धरती पे बोझ, और इस तरीके से निकल पड़े बस अपना पेट भरने के लिए। अब भर पेट वो गालियां देती और ये भर पेट गालियां खाते, आधा तो पेट उनका उसी में भर जाता, उनको बड़ी शांति मिलती, ये अच्छा हो रहा है। आगे भिक्षा करने जाते, कोई देता कोई ना देता, जब कोई ना देता तो उनको ज्यादा आनंद मिलता। ये लोग कहते मुझे ठीक से समझते हैं इसलिए नहीं देते, इन्होंने नियम बना लिया था जब भी भिक्षा करने निकले सबसे पहले उस माई के वहां जाने का, देती वो कभी नहीं थी, भरपेट गालियां देती थी मात्र, लेकिन नियम बनाया था जाना पहले उसी के वहीं। अब एक दिन वो झुंझला गई तो पोछा मार रही थी, पोता उठा के फेंका इनके ऊपर जोर से, भाग यहां से। इन्होंने पोछा ले लिया, सोचा कुछ तो दिया, इतने दिनों में तो नहीं दिया था, आज कुछ तो दिया, उन्होंने पोछा ही ले लिया। अब सोचा ये माई ने मेरे को पोछा दिया है तो इसका उपयोग तो भगवान की सेवा में करना पड़ेगा। समुद्र में गए, पोछे को अच्छी तरीके से धो दिया और पोछे को धोके उसके धागे धागे अलग कर दिए और उसको ऐसे लंबे गोले के रूप में बना के टुकड़े करके उसकी बत्तियां बनाई और बत्तियों के दिए करने लगे। अब जब बत्तियों के दिए हो गए तो ज्यों ज्यों दिया जले त्यों त्यों वो माता के हृदय के अंदर मोह रूपी अंधकार नाश होता जाए। अब माधवदास जी जब जब दिया करे ना उसके हृदय के अंदर शुद्धि जागृत होती जाए। एक दिन के प्रसंग में माधवदास जी जब उसके घर के आगे खड़े होकर बोले बहुत ही भिक्षाम दही, उतने वो माता आई और आके सीधे चरणों में गिर गई। बाबा इतने इतने दिन से मैं तेरे को रोज गालियां मारती थी, तूने कभी मेरा विरोध नहीं किया, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहे कि तू कितना बड़ा महान व्यक्ति है। तो कहते संत अगर किसी का कुछ स्वीकार कर लेते तो भी उसका उद्धार ही करते हैं। पोछा ले लिया था संतों ने, उसका दिया बना दिया तो माता का उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार माधवदास जी सामान्य प्रकृति के व्यक्ति नहीं थे। भगवान का जो भक्त होता है ना, वो भगवान के अंग संग में रहने के कारण, भगवान का भजन करने के कारण उसकी बुद्धि इतना तीव्र हो जाती है कि उसकी बुद्धि के ऊपर कभी मोह रूपी पर्दा नहीं पड़ता। इसलिए भक्त अगर बिल्कुल ना पढ़ा लिखा भी हो, भौतिक जगत का कोई अक्षर ज्ञान उसके पास ना भी हो, तो भी उसके अंदर विवेक बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि हर विषम से विषम परिस्थिति में भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसमें से हल ढूंढ लेते हैं। जहां अनेक पढ़े लिखे हार जाते हैं क्योंकि जड़ जगत की विद्या से वास्तव में हृदय में कोई परिवर्तन या शुद्धिकरण नहीं होता, इसलिए जड़ जगत की विद्या तो बाधा रूप में प्रकट होती है। जहां पढ़े लिखे हार जाते हैं वहां प्रभु भक्त समस्याओं को सुलझा देता है, क्योंकि वो बुद्धि का उपयोग करता है और बुद्धि इतनी तीव्र बन जाती है प्रभु भजन करके कि बुद्धि के ऊपर कभी उनके पर्दा ही नहीं पड़ता, इसलिए हर वस्तु को स्पष्ट देखते हैं, समझते हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी वो धीर बने रहते हैं, अधीर नहीं हो जाते। कौन सोच सकता है ऐसा कि भाई पोछे का भी ऐसा उपयोग हो सकता है कि उसका दिया कर दिया जाए, लेकिन ऐसी बुद्धि भक्त में आती है और उसके माध्यम से भी उन्होंने जीव का कल्याण कर दिया। तो वैष्णव तो भगवान के समान समझ लीजिए, भगवान से बढ़कर समझ लीजिए, तो ऐसे वैष्णव तो कितने महान है वो अनुमान लगा सकते हैं। तो माधवदास जी रहते बड़े विनम्र पूर्वक थे, लेकिन अंतर आत्मा उनकी बड़ी पवित्र थी और ज्ञान के भंडार भी थे। एक दिन दिग्विजय पंडित आया, वो पूरा भारत भ्रमण कर रहा था, काशी में गया। काशी के विद्वानों ने कहा कि आप जगन्नाथपुरी गए हो, माधवदास जी से मिले हो? कहते नहीं, हम जगन्नाथपुरी तो नहीं गए अभी। कहते वहां हुआ ही एक बार, काशी तो ज्ञान का धाम है, ज्ञान का भंडार है, काशी में तो सब लोग आखिर में आते हैं। पूरे भारत में विजय यात्रा करने के बाद व्यक्ति काशी में आता है अपना ज्ञान प्रकट करने के लिए, इसलिए आप जगन्नाथपुरी हो लीजिए पहले, बाद में हम तो है ही है यहां पर। क्योंकि भारत में उस समय ऐसा था कि काशी के पंडित लोग अगर स्वीकृति कर दे कि पूरे भारत में दिग्विजयी है तो मान्य हो जाएगा कि वो दिग्विजयी है। जब तक अगर काशी स्वीकृति ना दे तब तक नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ अब आखिर में आइएगा, पहले सब जगह पर घूम लीजिए, पत्र ले लीजिए। ये जगन्नाथपुरी गए और पूछते पूछते माधवदास जी कहाँ मिलेंगे। अब समुद्र किनारे पहुंच गए माधवदास जी के पास, जाके कहा हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। माधवदास जी समझ गए बात को, उन्होंने कहा भाई हम आता जाता है नहीं, हमने तो कोई ग्रंथ पढ़े नहीं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, हम आपसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। कहते ऐसे बहकी बहकी बातें करने से काम नहीं चलेगा, आप लोग को हमारे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। कहते भाई लेकिन मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, आता नहीं तो पत्र के ऊपर लिख दो कि माधवदास जी हारा और दिग्विजय पंडित जीता, ऐसा हस्ताक्षर करके दे दो, अपने हार स्वीकार कर लो। उनको मिनट भी नहीं लगी, उन्होंने हस्ताक्षर करके दे दिया, ले भाई तू जाना, मेरा शांति से अपना जीवन जीने दे, भजन करने दे, तेरे से जीत के मुझे कोई लाभ नहीं है, लिख के दे दिया। अब दिग्विजय पंडित को सिर्फ काशी बची थी, वहां जाके उसने बताया कि ये माधवदास जी का भी मैं लिखवा लाया, लो। वहां पंडितों ने देखा तो क्या लिखा हुआ मिल रहा है, दिग्विजय हारा और माधवदास जी जीते। पंडित जी कहते काशी के तुम हार के आया, कहते नहीं, कह यहां लिखा हुआ है देख, साईं ने तेरी भी साईं ने तू हारा है। कहते ऐसा हो नहीं सकता, उसने घूर के देखा तो समझ में, अच्छा माधवदास जी जीते और दिग्विजय पंडित हारा, ये कैसे हो गया, उसने तो अपनी हार मान ली थी। काशी के पंडित कहते भाई तेरे से कोई गलती लग गई है, तू हारा होगा। कहते नहीं नहीं मैं हारा नहीं, मैं दोबारा जाता हूं। दोबारा जगन्नाथपुरी आया, जगन्नाथपुरी आया तो माधवदास जी के ऊपर क्रोध करने लगा, कहते आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने ये पत्र को गलत भरा हुआ था। कहते नहीं मैंने तो हार स्वीकार की थी अपनी। कहते देखो इसमें तो आज जगन्नाथपुरी में माधवदास जी को पत्र दिखा रहे तो क्या दिख रहा है, दिग्विजय पंडित जीता और माधवदास जी हारे। माधवदास जी कहते ठीक ही तो लिखा है, मैं हारा हो तो हूं। कहते ये अक्षर भ्रम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात, ये आप कुछ चालाकी कर रहे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अभी तो यहीं पर जगन्नाथपुरी में प्रमाण करना पड़ेगा, जब प्रमाण हो जाएगा ना तो सब लोग मानेंगे इस बात को। अब ये बड़ा अहंकारी था, क्या प्रमाण में मांगता है, कहते काली शाही लेके आपका मुख काला करते और जूतों की माला पहना के आपको गधे में जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे ढिंडोरा पीटते हुए कि देखो माधवदास जी दिग्विजय पंडित से शास्त्रार्थ में हारा और उसका यह दंड है, तब क्या है पूरी जगन्नाथपुरी जान जाएगी तो काशी में अपने आप लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए अभी तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण करना पड़ेगा। माधवदास जी बेचारे तैयार हो गए विनम्रता में, वैसे भी जगन्नाथपुरी में हमारी व्यर्थ की ख्याति फैली हुई है, इसी बहाने लोगों को समझ में तो आ जाएगा कि हम कैसे हैं। वो कहते हैं मैं समुद्र स्नान करके आता हूं, फिर आप जो बोलेंगे वो कर देते हैं। माधवदास जी समुद्र स्नान करने के लिए ज्यों गए ना, उतने में जगन्नाथ जी आ गए पोथी लेकर, बटुक ब्राह्मण का वेश लेकर, दिग्विजय पंडित के सामने आके खड़े हो गए। हमने सुना है आप भारत में घूम रहे शास्त्रार्थ कर रहे और यहां माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने आए, माधवदास जी तो शास्त्रार्थ बाद में कर लीजिएगा, वो हमारे गुरु लगते हैं, हम उनके एक चेले हैं, आप हमको हरा दीजिए बाद में गुरु से चर्चा कर लीजिए। अब वो तैयार हो गया, कहते ठीक है चलो। कहते नियम लेकिन वही रहेंगे जो आपने माधवदास जी के सामने रखे हैं। कहते मंजूर है, जब गुरु ने हार मानी है तो शिष्य क्या करेगा। अब भगवान ने क्या किया, सबसे पहले उसकी मति शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले फेर दी और बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न किया, पहला ही प्रश्न किया, कहते श्रीमान जी उत्तर तो दीजिए, अब उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा, कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि इसका उत्तर क्या होता है, क्योंकि पूरी मति फेर दी। वो बार बार प्रयास कर रहा है, उसको उत्तर ही नहीं समझ में आ रहा है। भगवान कहते हैं आप हार रहे तो फिर जो नियम था आपने बनाया था वो तो वही रहेगा। तो भगवान क्या किए थे, अपने पास काली शाही लेकर आए ही थे, उसके मुंह पे लगाई, जूते का हार पहना के गधे में बिठाया, और माधवदास जी अभी तो स्नान करके आए ना, उतनी देर में तो भगवान उसको लेके निकल भी पड़े चलो, और साथ में अपने मित्र लोग भी बुला के रखे थे जो पीछे से बड़ी बड़ी ऐसी बातें बनाते जा रहे थे, मस्ती करते हुए जा रहे थे, इसके ऊपर टाने मारते मारते। अब माधवदास जी स्नान करके आए, देखे तो यहां कोई है ही नहीं, कहां चले गए। देखते देखते आगे गए तो शोरगुल हो रहा है, जब आगे गए तो देखते हैं कि पंडित जी गधे के ऊपर बैठे और उनका वेशभूषा बड़ा बदसूरत हो रखा है। माधवदास जी आए, कहते हम स्नान करके आ रहे थे, उतने देर में आपको इतना अधीर हुपन हो गया कि आप पहले निकल गए हमारे से। अरे हमको आने तो देते स्नान करके, आप अपने धीरज भी नहीं रखी, खुद ही गधे पे बैठ गए आप। कहते हम गधे पे बैठे नहीं, हमको बिठाया गया है। कहते आपको किसने बिठाया, आपके शिष्य ने। हमारा शिष्य, हमारा शिष्य कहाँ है। उन्होंने ऐसे ऐसे देख के उंगली करके दिखाया, वो रहा ना आपका शिष्य वो। माधवदास जी देखते रह गए, वो बटुक सभी मित्रों के साथ में नाच रहे थे। माधवदास जी सोचे हमने तो किसी को दीक्षा दी नहीं, हमारा शिष्य कहाँ से हो गया ये। अब उतने में क्या हुआ, माधवदास जी ने उनको नीचे उतारा, उनका मुख धुलवाया और उनसे माफी मांगी, कहते आप बुरा ना लगाना और अभी वो ढूंढ रहे मेरा शिष्य कहाँ गया, वो इधर उधर ढूंढ रहे, वहां कोई दिख ही नहीं रहा है। तब माधवदास जी को समझ में आ गया ये स्वयं जगन्नाथ जी आके लीला करके चले गए। अब माधवदास जी के डर के मारे जगन्नाथ जी वहां से भाग गए। अब माधवदास जी ढूंढ रहे, वो जगन्नाथ जी मिल नहीं रहे उनको, लेकिन वो समझ गए। तो पूरे जगन्नाथपुरी में इस बात को भगवान ने इतनी तीव्र गति से प्रसारित कर दिया ना कि दिग्विजय कभी भी जीवन में काशी पहुंचे ना तो काशी वालों को पहले ही सूचना समाचार भिजवा दिया कि ये बहुत बुरी तरीके से माधवदास जी से हारे हैं। उसके बाद जीवन में कभी उसने शास्त्रार्थ नहीं किया, उसी दिन सारा शास्त्रार्थ छोड़ दिया। तो भगवान के भक्तों से मिले तो कहीं ना कहीं उसका ये लाभ जरूर हुआ कि भगवान के दर्शन तो हो गए उनको, और कम से कम जिस अहंकार को लेकर वो घूम रहे थे उस अहंकार से तो उनका पीछा छूट गया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना उनके संपर्क में जीव का हर प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। कुछ दिन वहां पर रहने के बाद माधवदास जी के मन में इच्छा हुई वृंदावन में भगवान के लीलाओं का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जगन्नाथ भगवान से अनुमति लेने गए, विदा मांगने गए, प्रभु हम वृंदावन जा रहे थोड़े दिनों के लिए। जगन्नाथ जी कहते मुझे भी आना है। कहते आप कहाँ चलेंगे, हम तो साधु ठहरे, हम वैरागी, हम तो कहीं भी सो जाएंगे, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी चलेंगे, आपका तो इतना यहाँ ठाट बाट से सब होता है और आप तो इतने सुकोमल हो, आप कहाँ हमारे साथ चलोगे। भगवान कहते नहीं हमको चलना है। माधवदास जी कहते भाई हमारे साथ कोई मालपुआ नहीं मिलने वाले, हमारे साथ तो कभी घी चना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, ऐसा हमारा तो कामकाज चलेगा। भगवान कहते हम भी चला लेंगे आपके साथ साथ, चलो तो सही, हमको ले तो लो। अब भगवान ने जिद कर दी, माने नहीं तो माधवदास जी के चलो फिर आप भी साथ में। अब चल पड़े दोनों। अब माधव दास जी तो अपने धुन में वृंदावन दर्शन करने जाने, उस धुन में चलते जा रहे, मूड आया तो विश्राम किया, नहीं मूड आया तो वो भी नहीं किया, भोजन पानी सामने से कहीं ढूंढने मांगने जाते नहीं थे, बस चलते रहते थे। अब जगन्नाथ जी को क्या हो गया, बड़ी जोरों की रास्ते में भूख लग गई। सोचे माधव को बोलूंगा ना तो डांटेगा, कि हम इसलिए तो बोल रहे थे आपको, आप मत आओ रहन दो। उन्होंने क्या किया, योग माया से कह के माधवदास जी के पेट में भी बड़ी भूख पैदा कर दी। अब माधवदास जी को भी बड़ी भूख लगी, जब अब इतनी बड़ी जोरों की भूख लगा दी भगवान ने कि वो वैसे मांगते तो थे नहीं, लेकिन अभी इधर उधर ढूंढने लगे, किसी का घर मिले कुछ मिले तो कुछ खा पी ले। भगवान ने व्यवस्था करवा दी, रास्ते में घर आया, माई बड़ी उदार हृदय की थी, जाके कहा कि हम वृंदावन की ओर जा रहे, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओगे क्या? उसने बिठाया, आओ आओ बैठिए बैठिए। अब क्या हुआ, माता ने अनेक प्रकार के व्यंजन लाके दिए उनको। भगवान बालक रूप में थे माधवदास जी के साथ में, माधवदास जी बैठे, भगवान भी उसी थाली में सामने सामने बैठ गए, और प्रभु और भगवान दोनों, माधवदास जी और भगवान दोनों एक ही थाली में खा रहे। ये दृश्य जब वो माई ने देखा तो माई कहती है, बालक कितना सुंदर है और कितना कोमल है, ये ऐसे यात्रा कर रहा है तो उसकी माँ उसको याद नहीं करती होगी। अब वो माई भी इतनी भावुक थी ना कि अंतर्मुख हो गई, और ऐसी अंतर्मुख हो गई कि यशोदा से कृष्ण को दूर कर दिया और कृष्ण को ले गए मथुरा में, और कृष्ण की इतनी सुंदर छवि को नहीं देख पाने के कारण यशोदा कितनी दुखी हुई होगी, उस भाव में चली गई और वो तो धर धर करके रोने लग पड़ी। उस बालक को देख के उसको कृष्ण का वीरह होने लगा, और जब उसको कृष्ण का इतना वीरह हो गया ना तो माधवदास जी भी बड़े भावुक हो गए, वृंदावन के भाव में चले गए, माधवदास जी भी रोने लग पड़े, हाँ प्रेम मगन अवस्था में चले गए। बड़े लंबे समय तक ये लीला चलती रही, फिर भावों का संवरण करके फिर आगे बढ़े। तो माधवदास जी आगे चल रहे रास्ते में, तो एक वैश्य था जो माधवदास जी को जगन्नाथपुरी में मिला था, उसने कहा था, महाराज हमारा गांव वृंदावन जाते समय रास्ते में कभी आओ तो हमारे घर जरूर आना। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कभी आएंगे तो तुम्हारे घर भी आएंगे। उनको याद आई कि रास्ते में कह रहा था, अब उनके घर गए, घर गए तो व्यक्ति था नहीं लेकिन उसकी धर्म पत्नी थी, और धर्म पत्नी इतनी उदार प्रकृति की और इतनी धर्मपरायण थी कि साधु को आया देखकर बड़ा स्वागत करके, वो पहचानती तो थी नहीं लेकिन बड़ा स्वागत करके घर में लाके बिठाई। सोची कि इनको कुछ रहने के लिए कुछ स्थान भी दिया जाए, कुछ भोजन पानी भी कराया जाए। उसी के घर में ऊपर वाले कक्ष में उनके घरेलू कोई महंत थे, वो आ रखे थे, और महंत अपना सारा सामान बिखेर के ठाट बाट से ऊपर वाले कक्ष में बैठे थे। इसने जाकर कहा कि महंत जी, एक साधु आए हैं तो यहाँ आपके साथ रहेंगे क्या? कहते यहाँ जगह कहाँ है, यहाँ कहाँ रहेंगे, हमारा इतना सामान है, यहाँ जगह नहीं है। वो बिचारी अब क्या करती, वो नीचे आई, कहते महाराज रहने के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पा रही, लेकिन हम आपको कुछ सामान दे देते, आप जो चाहो बना के भोजन करो। कहते इतना समय हमारे पास नहीं है, आपके पास जो है वो ही दे दो हमको, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। तब क्या किया, उनके घर में दूध रखा हुआ था, उसने खूब दूध को उबाला और गाढ़ा दूध करके माधवदास जी को दे दिया पीने के लिए। माधवदास जी ने पिया, उनका धन्यवाद किया, कहते माई अभी हम आगे निकलते हैं, और वो आगे यात्रा के लिए निकल पड़े। वो गए के तुरंत पीछे उनका पति आ गया, पति आया तो उन्होंने सारा विवरण बता दिया। तो पति ने कहा, माधवदास जी आए थे जगन्नाथपुरी से, इतने महान भक्त, उतने वो महंत जी ने भी सुन लिया उन्होंने सुन रखा था जगन्नाथपुरी में ऐसे कोई माधवदास जी बड़े महान है, कहते वो यहाँ आए थे और रहने के लिए स्थान मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। महंत जी को भी बड़ा दुख लगा। वो पति और महंत जी दोनों पीछे भागे माधवदास जी के। रास्ते में माधवदास जी को मिल लिए, कहते महात्मा आप हमारे घर पे आए और बिना कुछ विशेष खाए पिए निकल गए। नहीं नहीं दोबारा चलिए दोबारा चलिए, हम आपकी बहुत अच्छी सेवा करेंगे। वो महात्मा जी कहते कि मेरे से भी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने सोचा कोई जाता हो, कोई आया होगा, कोई साधु, हम नहीं जानते थे कि आप स्वयं थे, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। माधवदास जी कहे हम तो अभी वृंदावन जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है, वापस तो नहीं आएंगे अभी, लेकिन अगर वृंदावन यात्रा करके यहां से लौटेंगे तब मिलेंगे आपको। संत जी कहते लेकिन मैंने आपके चरणों में अपराध किया है, उसका तो मुझे भुगतान करवाओ, उसकी तो मुझे माफी करवाओ। माधवदास जी कहते मैंने तो कोई अपराध नहीं लिया, तूने मेरे प्रति नहीं किया है लेकिन भक्त नाम के प्रति किया है, तो उसका मार्जन तो यही है कि भगवान के भक्त जो भोजन करते हैं और उनका जो बचा हुआ प्रसाद होता है ना सिद्ध प्रसाद, वो तूने खाने का, उसी से ही तुम्हारी मति ठीक हो जाएगी और अपराध निकल जाएंगे। वो महंत जी को उन्होंने ऐसा उपदेश देके माधवदास जी वहां से रवाना हो गए। और माधवदास जी ने उस श्रीमान से, उस वैश्य से उनकी धर्मपत्नी का भी बहुत बखान किया कि जैसे तुम धर्मात्मा हो ना, ऐसे तुम्हारी धर्मपत्नी भी बड़ी महान है, वो भी धर्म परायण है, तुम्हारे नहीं होने के बावजूद भी उसने हमारी बड़ी सेवा की। संत घर में आते हैं तो जो गृह होता है ना, वास्तव में जहां गृहस्थी लोग वास करते हैं, गृह में रहते इसलिए उनको गृहस्थी भी कहते हैं, और गृहस्थी की अच्छी परिभाषा एक ये भी होती है कि उनके बीच में भगवान रहते हैं। तो जहां भगवान रहते हैं वहां उस घर में कोई साधु आए तो अपमान करके नहीं भेज देना चाहिए, यथासंभव व्यक्ति ने उनकी जो सेवा बन पड़े करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थियों को उस ग्रह कुप में से बाहर निकलने के लिए साधु सेवा एक सबसे बड़ा हथियार होता है, जिससे वो उस भवकुप से शीघ्र ही बाहर निकल सके। इसलिए राजा महाराजा लोग भी ऐसे वैष्णव की आक्ता स्वागता अपने महलों में किया करते थे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जी भोग करने के लिए संसार में पड़ा है और धर्म का ज्ञान नहीं उसके पास कोई, तो ऐसा व्यक्ति किसी का सम्मान या मर्यादा नहीं रखेगा। तो कहते जिस घर में नारी धर्म परायण नहीं है ना, उस घर में भगवान का वास होना भी बड़ा कठिन है। तो प्रसंग आता है एक भक्त का, भक्त जी का तो संत सेवा में बड़ा मन था, लेकिन घर वाली थी ना वो बड़ी कर्कशा स्वभाव की, उसको संतों से ही एलर्जी। आए दिन भक्त जी किसी संत को ले आए और ये चिढ़ती रहे। अब एक दिन क्या हुआ, भक्त जी घर पे नहीं थे और कुछ संत आ गए, आके घर में बैठे। अभी इसने सेवा करनी नहीं थी, इसके हृदय में भाव नहीं था, तो इसने क्या किया, घर में जो मुसल होता है, मुसल और रस्सी इधर उधर रखने लगी, कभी इस कमरे में रखे, फिर उठा के बाहर ले आए जहां संत बैठे थे ना वहीं ले आए उनके सामने देखते हुए, फिर दूसरे कमरे में जाके रखे, फिर इस कोने से उठाए उस कोने में रखे, बार 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 इधर इधर उधर करती रहे। संत जी कहते माई क्या बात है, तुम ये मुसल और रस्सी लेके बार बार इधर इधर उधर करती रहती हो, बात क्या है। कहते आप तो साधु इसलिए आपको तो स्पष्ट बता देते हो, मेरे जो घर वाले है ना मेरे पति, वो संतों को देख के ही चिढ़ते हैं, अगर गलती से कोई संत घर में आया ना, रस्सी से बांधते और इस मुसल से खूब उनकी पिटाई करते, इसलिए आपको बांध के मारे ना, इसलिए मैं क्या करते हूं ये रस्सी और मुसल इधर उधर के छुपाने का प्रयास करते हूं, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही छुपाने की। संत कहते माई छुपा मत, हम ही जा रहे हैं यहां से, हाँ अगर वो ऐसा व्यवहार करते तो हमने नहीं रहना, हम ही जा रहे। संत निकल गए, संत का जाना और उतने ही देर में उसके घर वाले का आना। उसने संतों को बाहर जाते हुए देख लिया तो घर पे आके पूछा कि साधु संत आए थे, कुछ सेवा वगैरह की उनकी? कहते सेवा करने ही वाली थी, लेकिन वो एक जिद कर रहे थे। क्या जिद कर रहे थे? कहते रस्सी और मुसल चाहिए बस हमको। तो वो पति कहता तो दे देना था रस्सी और मुसल, अरे हम दूसरा ले आते, साधु को आवश्यकता थी तो साधु को दे देते, हम दोबारा ले लेते, ला इधर दे मेरे को। और लिया रस्सी और मुसल और चले पीछे। अब संत आगे निकल गए, पीछे पीछे आवाज लगाते लगाते जा रहे। संतों ने पीछे मुड़ के देखा, ये रस्सी और मुसल तो ले जाइए। अब भाग रहे पीछे पीछे, संतों ने देखा ये तो यही पीछे पड़ गया तो मारने के लिए यहां हमको। बड़ा तीव्र गति से भाग गया ये तो, संत सारे भाग गए, ये पीछे पीछे भागा, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं। इनको समझ में आई कुछ बात, ये रस्सी और मुसल मांग रहे थे तो मुझे देख के फिर लेके ले लेना चाहिए था, रुकना चाहिए था, भाग क्यों गए वहां से? बात कुछ और है। उसको थोड़ी भनक लग गई, क्योंकि घरवाली को भी थोड़ा बहुत तो जानता ही था वो। घर आया, घर आके बड़ा डांट के बोलता है, तू सच बता, सच बता क्या बात थी। अब डर के मारे उसने सारा विवरण बता दिया। कहते तेरी जो इच्छा थी ना वो संतों के साथ तो नहीं लेकिन तेरे साथ जरूर पूरी कर देते, उसी को रस्सी से बांधा और खूब पिटाएगी उसकी। आगे से संत आएंगे तो सेवा करेगी कि नहीं बता, बता सेवा करेगी कि नहीं? दे दबा के मुसल मारे बोल, सेवा करेगी कि नहीं? हाँ करूंगी करूंगी, आप ठीक है कहते। तो ऐसे कर्कशा स्वभाव की स्त्रियां जो होती है, अपवित्र रहती है, सेवा करने में मन नहीं होता, उनके घर में भगवान का वास भी नहीं होता। एक ब्राह्मण पंडित जी भी इसी स्वभाव के, मन तो बड़ा भक्तों की सेवा करने का, लेकिन घरवाली का एक ऐसा विपरीत स्वभाव, जो ब्राह्मण बोले ना उसका विरोध करने का, वो जो बोले उसका बिल्कुल विरोध करने का। अब इसके कारण क्या होता कि कभी सेवा ना होती घर में। इन्होंने जाके एक महात्मा जी से पूछा कि मेरे घर में बड़ी समस्या है, मैं हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूं, मैं जो कहता हूं मेरे घर वाली हमेशा उसका उल्टा करती है, मैं बड़ा परेशान हो गया। महात्मा जी की इतनी छोटी सी बात, तू हमेशा उल्टा करने का प्रयास कर बस, बाकी अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इसको महात्मा की बात समझ में आ गई। कहते मैं इतने दिन से समझ नहीं पाया, आज महात्मा ने समझा दिया। अब घर गया, अब त्यौहार आया, धर्म पत्नी को कहता है पूरे गांव में सब लोग मालपुआ और खीर बनाएंगे, त्यौहार है, लेकिन खबरदार जो तूने मालपुआ और खीर बनाई तो हमको नहीं बनानी बिल्कुल, हमको खिचड़ी बनानी है, जार की रोटी खानी है। वो कहती मैं तो बनाऊंगी बनाऊंगी मालपुआ और खीर, जरूर बनाऊंगी, अभी आपने मना किया अब तो मैं जरूर बनाऊंगी। कहते मैं कह रहा हूं, कहते नहीं लेकिन बनाऊंगी बनाऊंगी। अब बना दिया। अब ये देखने में तो ऐसा मुंह करके खा रहे जैसा, बाहर से जैसा मन नहीं कर रहा है, अंदर से खूब आनंद आ रहा है क्योंकि चाहिए था यही। अब इनको समझ में आ गया कि सारी बात ठीक कैसे करनी है। जो कार्य इनको करना होता ना इसका हमेशा उल्टा बोल देते, इसलिए बराबर उनकी जो हृदय में इच्छा होती ना वो कार्य अपने आप हो जाता। कभी घर आए और कड़ाके की भूख लगी और देखे घर वाली सो रही है तो आके तुरंत बोलते खबरदार जो मुझे भोजन के लिए पूछा तो मेरी बिल्कुल भूख नहीं है खाने की, बिल्कुल इच्छा नहीं मुझे खाने की, मेरा लिस्ट मात्र भी मन नहीं, मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है, तू आराम से सो रही वहीं सो, खड़ा नहीं होना तूने। अच्छा जी ऐसे कैसे नहीं खाओगे, अब तो मन नहीं ना, आपको पेट खाना ही पड़ेगा, पेट फाड़ के भी खाना पड़ेगा। तो इतने शीघ्र अतिशीघ्र भोजन बन जाए जितना तो उसने कभी कल्पना नहीं किया था। अब इसको तो बड़ा आनंद आने लग पड़े, ये संत जी ने बड़ा अच्छा उपचार बता दिया है कि वो उल्टा कर रही थी, अब हमने उल्टा करना शुरू कर दिया तो सबको सीधा हो गया। अभी लेकिन गलती से कहीं ब्राह्मण को बोलने में चूक हो जाए ना अगर, तो उस दिन वो फंस जाए। इसलिए वो बड़ा ध्यान रखते थे कि हर चीज उल्टी करनी है। लेकिन कहते ऐसा रोज रोज उल्टा कर करके कितने दिन निकालेंगे इसके साथ में। खबरदार, तो तूने अपने एक मायके में किसी से बातचीत की और उनको यहां बुलाया है, तो हमारे घर में कोई नहीं चाहिए। कहते तो अब तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। भाई को बुलाया सेवा के, अब उसको लगा कि मामला बन सकता है। एक दिन उसने कहा, घर का आंगन छोड़ के खबरदार कहीं बाहर गई हो तो, घर में ही रहने का, बाहर नहीं जाने का। कहते अब तो मैं मायके जाऊंगी, और जितने भी गहने ना तेरे, एक भी यहां नहीं रखना, सारे के सारे लेके जा। ये रखे मैंने, हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं अभी। समुद्र नदी में बहुत बाढ़ आ रही है तो नाव में बैठना, नाव में बैठ के नदी पार करना, समझ में आया तेरे को? ये मेरा ऑर्डर है। कहते अब तो मैं नाव में बैठूंगी नहीं, अब तो मैं तैर के ही जाऊंगी। अब बाढ़ आई थी, तैरने गई, उसी प्रभाव में क्या हो गया कि वो बह गई, उसका शरीर छूट गया। ब्राह्मण जी सोच रहे थे कि कितने दिन ऐसे विपरीत परिस्थितियों में काम चला दे। आखिर में शरीर छूटा, उन्होंने अपने आप को मुक्त पाया और सुखी हो गए। कहते अब ठीक है जीवन, कहते। तो संसार में जब मन मुटाव होता है तो जीवन नरक बन जाता है। कोई भी एक अगर कुपात्र हो तो दोनों का ही जीवन नरक बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सदगति प्राप्त करने के लिए दोनों का धर्म में प्रवृत्त होना बहुत जरूरी है। दोनों अगर एक समान धर्म में प्रवृत्त रहेंगे ना, तो उनके घर में साधु संत भी आते रहेंगे, भगवान का वास भी होगा और शीघ्र ही संसार से मुक्ति भी हो सकती है हमारी। यही हमको धर्मशास्त्र शिक्षा देते हैं। माधव दास जी अभी वृंदावन पहुंच गए, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, किसी ने रास्ते में चने दे दिए। बांके बिहारी जी के दर्शन किए और दर्शन करके अब वहां से प्रस्थान कर रहे थे, तो वहां पहरेदार था, उसने कहा महात्मा जी रुकिए थोड़ी देर, अभी भगवान को राजभोग लगने वाला है, राजभोग लेके ही जाइएगा। कहते नहीं नहीं ठीक है भाई। वहां से निकल गए, यमुना के किनारे बैठ गए। अब जो चने मिले थे यमुना के किनारे पर बैठे और वही चने बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाए बांके बिहारी जी को। और यहां स्वामी जी ने, हरिदास जी ने भगवान को राजभोग लगाया। अब क्या हुआ, भगवान राजभोग नहीं खा रहे। स्वामी जी पूछ रहे, प्रभु क्या बात है आप राजभोग नहीं खा रहे? हमारा मन ना चने में आ गया है, चने तो भोग लगाए नहीं हमने। कहते माधव दास जी ने लगाए चने भोग, हमारा मन वहां आ गया है, हमने चने खा लिए, हमारा पेट भर गया। स्वामी जी ने माधव दास जी को बुलाया, कहते महात्मा आप यहां रुकते, भगवान का प्रसाद खाते, आप यहां से क्यों चले गए? कहते हम इसके अधिकारी नहीं है, हमारे लिए तो यही ठीक है, चने ठीक है। कहते आप चने की बात करते हो, आज बिहारी जी भी आपके पास आए चने खाने के लिए, उन्होंने भी राजभोग नहीं खाया। तब माधव दास जी को लगा कि भगवान को जब प्रेम से खिलाया जाए तो भगवान राजभोग छोड़ के चने खाने भी जाते हैं। यही भगवान की महानता है, क्योंकि भगवान प्रेम से सारा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार फिर स्वामी जी ने माधव दास जी को वहीं बिठाया, भगवान को भोग लगा के माधव दास जी को राजभोग अर्पण कराया और बड़ी भक्ति में बातें की आपस में संतों ने बैठ के। माधव दास जी का मन आया कि ब्रज के अलग अलग स्थानों में थोड़ा घूम लेते, भांडिर वन में चले गए। भांडिर वन में गए जहां भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला हुई थी, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह करवाया था भांडिर वन के अंतर्गत। और भगवान भी वहां पर अनेक लीलाएं करने जाते थे, वृत्तासुर का वध भी भगवान ने वहीं पर ही किया था। तो बांडेर वन में जब गए तो वहाँ क्या हुआ, उस वट के नीचे बैठ गए जाके। वहीं बांडेर वन में पास में ये खेमदास जी अपनी कुटिया बना कर रहते थे। जब वट के नीचे बैठ गए जाके, ये झुंझला गए, कहाँ से आयो, यहाँ हमारा डेरा जमा दिया है, चलो उठो यहाँ से भागो, आज ये आगंतुक बोल के बैठे हो, कल धीरे धीरे करके पैर जमा दोगे, फिर यहाँ वहाँ से भिक्षा लोगे, हाँ, और फिर यहाँ की महानता ही करोगे, फिर जब निकालने की बारी आएगी तो आंखें दिखाओगे, इसलिए यहाँ नहीं बैठना, चलो चलो उठो यहाँ से निकलो। अब खेमदास जी साधु वेश में थे लेकिन पूरे साधु नहीं थे। माधवदास जी ने बड़ी विनती की, भाई मैं तो यहाँ यात्री हूँ, मेरे को यहाँ वास नहीं करना है, आप मेरे से इतना भय मत करो, मैं तो यहीं जो भी कुछ आपको परेशान भी नहीं करूँगा, जो यहाँ पर कुछ उपलब्ध होगा रुखा सुखा वही खा लूंगा, आपको परेशान नहीं करूँगा, आप चिंता मत करो। अब खेमदास जी उनको डांट फटकार करके अपनी कुटिया में चले गए और अपनी कुटिया में जाके बराबर एकदम उबाल उबाल के फर्स्ट क्लास खीर बनाई, हाँ, और चुपके से कुटिया का दरवाजा बंद करके अब खीर खाने जा रहे। भगवान ने कहा, वाह, वहाँ बाहर मेरे भक्तों को इतना डांटे फटकारे हो, हाँ, अपने आप को वैराग्य साधु बता के, और यहाँ कुटिया का दरवाजा बंद करके खीर खा रहे हो, खीर में जितने चावल थे ना वो मोटे मोटे कीड़े बन गए, और खेमदास जी ने कटोरा पकड़ा था तो वो उनके हाथ के ऊपर चढ़ने लग पड़े, झट कटोरा छोड़ दिया उन्होंने, एकदम से आश्चर्य कर गए, ये कीड़े कहाँ से पड़ गए इसमें। उनको समझ में आ गया, मैंने वो भक्त के चरणों में अपराध कर दिया है। बाहर आए, वट के नीचे माधवदास जी बैठे हुए थे, आके तुरंत दंडवत प्रणाम किया और माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, कहते मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हाँ, आपके ऊपर इस प्रकार से रोष करके, हाँ। लेकिन माधवदास जी बड़े उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, माधवदास जी ने उनको तुरंत माफ कर दिया, लेकिन उनके मन में संतोष नहीं मिल रहा है। खेमदास जी क्या कहते, नहीं नहीं नहीं, मेरा उद्धार करो, मुझे कुछ उपचार बताओ, मेरे दोष निवारण के विषय में मुझे कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जितना भी द्रव्य है ना, सारा का सारा द्रव्य जो तुमने इकट्ठा किया है ना अब तक, वो सारा द्रव्य जाके संत सेवा में बांट दो, अपने पास कुछ मत रखो, और विश्राम घाट पे जाके वहां पर झाड़ू मारा करो, झाड़ू मारोगे तो हृदय भी साफ हो जाएगा, ये तो भगवान का धाम है, स्वयं भगवान का घर है, भगवान के घर को साफ करोगे तुम्हारा हृदय भी साफ हो जाएगा, और रोज संतों की सेवा करना, और संत लोग भोजन कर ले, उसके बाद जो भोजन मिले वो ग्रहण कर लेना, निश्चित भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। खेमदास जी को ऐसा उपदेश देके माधवदास जी वहां से निकल गए। वृंदावन यात्रा करने के बाद उनको याद आया, जिस गांव को छोड़ दिया था, हरियाणा के अंदर गोली नामक गांव था, उनको छोड़ दिया था, वहां पर एक बार अपने जन्मभूमि स्थान पर होके आए, जन्मभूमि स्थान पर गए लेकिन किसी ने उनको वहां पहचाना नहीं। अपना घर ढूंढते ढूंढते गए, माता बड़ी वृद्ध हो चुकी थी उनकी, माता ने सोचा को साधु आया करके बिठाया उन्होंने, ये तो माता को पहचान गए लेकिन माता इनको नहीं पहचाने। बैठे और प्रसाद लेने लगे, माता ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? कहते माता जगन्नाथपुरी से आ रहे। अच्छा, जगन्नाथपुरी से? जगन्नाथपुरी में तो मेरा माधव भी है, कई साल पहले यहां से निकल गया है। माता माधव की चर्चा कर रही थी, उतने में माधव दास जी बोल पड़े, माता माधव मैं ही हूं। माता कहते, तू माधव नहीं हो सकता। कहते माता, वो माधव मैं ही हूं, मेरा मन नहीं मानता माधव तू नहीं हो सकता, मेरा माधव तो वैरागी था। भगवान जगन्नाथ जी को छोड़ के, उनकी इतनी दिव्य सेवाओं को छोड़ के मोह माया में फंसकर यहां घर वापिस आया है? तेरे को लाज नहीं है घर पे आते हुए? क्यों तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया? ऐसा निर्लज माधव दास जी को बड़ी फटकार लगाई उनके माने। माधवदास जी ये चिंता करके वो एक बार जन्मभूमि हो आए थे कि माता वृद्ध हो गई होगी, एक बार जन्मभूमि हो आते उनको मिल लेते। यहाँ तो माता भी इतनी बड़ी महान भक्त, देखो वैराग्य के जीवन में जो साधु होते हैं ना उनको ये शिक्षा लेने वाली बात है, उनके माता ने जो सिखाई है। वो भगवान को छोड़कर यहाँ घर के घर को आए हो, माँ को देखने मोह हो गया है हा? क्या भजन करने गए थे? फिर जब बड़ी डांट लगाई ना माँ ने, तब माधवदास जी तुरंत वहां से रवाना हुए माता को प्रणाम करके, और मन बना लिया जब तक अभी जीऊंगा ना जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, अभी जगन्नाथ जी के पास में ही रहूंगा। क्यों मैंने जगन्नाथ जी भगवान को छोड़कर व्यर्थ में कहीं और की चिंता की? वापिस आए जगन्नाथपुरी, जब तक रहे जगन्नाथ भगवान के साथ में, उनकी भक्ति में उनकी सेवा में लगे रहे, जगन्नाथपुरी छोड़कर कहीं नहीं गए, और वहीं जगन्नाथपुरी में ही अपनी लीला का संवरण करके भगवत धाम की ओर प्रस्थान किया। तैसे महान भक्त थे माधवदास जी महाराज के, जिनकी कृपा से हम सब लोगों को जीवन में अनेक चीज़ें सीखने को मिलती है कि वैराग्य कैसा होना चाहिए, ज्ञान का अहम नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, भगवान की स्वयं कृपा होने के बावजूद भी अपने आप को दीनहीन कैसे मानना है, ये सारी शिक्षाएं माधवदास जी के जीवन चरित्र में से हमको प्राप्त होती है। तो माधवदास जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम लोग को भी भक्ति का लाभ मिले। श्री माधवदास जी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की, श्री पुरुषोत्तम मास की जय।